आज है 28 जुलाई दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र की आपत्ति को किया खारिज। मादक तस्करी मामले में होगी 14 विदेशी नागरिकों को फांसी। तमिलनाडु में मंदिरों में दलितों को नहीं मिली प्रवेश करने की अनुमति। किया धर्म परिवर्तन का फैसला। ऊना की घटना से नाराज दलितों ने जताई धर्म परिवर्तन की इच्छा।
गंदा साफ करने का काम कर रहा है तो उसको मार खानी पड़ती है। मरे हुए पशु खींचते हैं तो भी मार पड़ती है। गुलामी में से मुक्त होने का वही एक ही रास्ता है, इसलिए हम धर्मांतर कर रहे हैं।
और बांग्ला भाषा की साहित्यकार महाश्वेता देवी नहीं रही।
वो एक इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि तीसरी दुनिया के देशों के लेखकों को कैसा होना चाहिए।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। इंडोनेशिया ने एक भारतीय सहित 14 लोगों को मिली मौत की सजा की तामील रोकने की संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और विदेशी सरकारों की अपील खारिज कर दी है। इन लोगों को मादक पदार्थ की तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है। नुसा कंबनगन द्वीप के जेल में मौत की सजा की तामील की तैयारियां तेज हो गईं। कई एम्बुलेंस ताबूत लेकर गुरुवार सुबह जेल के पास इस बंदरगाह शहर में पहुंचे। जेल में सभी दोषियों को मौत की सजा के तौर पर गोली मारी जाएगी। दोषियों में अधिकतर विदेशी नागरिक हैं। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने इंडोनेशिया से मौत की सजा की तामील पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। देश के पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद।
बिहार और असम में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, सहरसा, सुपौल, गोपालगंज समेत कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच चुकी है। वहीं असम में भी बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पर खासा असर डाला है। असम के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक वहाँ 13 लोगों की मौत हो चुकी है।
आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 70 खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए रियो रवाना हो गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को डोपिंग मामले में प्रतिबंध की वजह से घर पर रुकना पड़ा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने रूस के सभी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसका फैसला व्यक्तिगत खेलों की फेडरेशन पर छोड़ दिया। वॉलीबॉल, हैंडबॉल, मुक्केबाजी, तैराकी और टेबल टेनिस के खिलाड़ी हिस्सा लेने की उम्मीदें बांधे हुए हैं। जापान की सहायता से कोरिया के सियोल में एक संस्थान खोला गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरिया की महिलाओं को जापान के वैश्यालय में मजबूरन काम करवाया जाता था। ये संस्थान उन्हीं महिलाओं की याद में खोला गया है। इसके जरिए जापान इस मुद्दे पर दोनों देशों के कई साल से खराब रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इस संस्थान के लिए जापान सरकार ने $1 करोड़ दिए हैं। जापान के साथ किए इस समझौते को लेकर कुछ नाराज छात्रों ने प्रदर्शन भी किए। संस्थान के उद्घाटन समारोह में ये कोरियाई प्रदर्शनकारी छात्र नारे लगाते हुए और हाथों में बैनर लिए हुए मंच पर आ गए। तुर्की के दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद होने वाली सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की बैठक से घंटों पहले ये इस्तीफा दे दिया गया। यह कदम 1,500 सैनिकों को तख्तापलट की कोशिश में शामिल होने के आरोपों के तहत निकाले जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की अपील को दरकिनार करते हुए कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 14 विदेशी नागरिकों को फांसी की सजा दी जाएगी। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र या यूएन के प्रमुख ने कहा था कि यूएन मानता है कि इस मामले में सुनवाई पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं थी। हालांकि इन विदेशी नागरिकों के नाम तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इन लोगों में नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और भारत के नागरिक शामिल हैं। पूरे ब्यौरे के साथ वैभव श्रीवास्तव।
इंडोनेशिया सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार 14 लोगों को आने वाले दिनों में फांसी की सजा देने वाली है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र की ओर से असहमति के बाद भी इंडोनेशिया सरकार ने फांसी की सजा पर कायम रहने का फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार मामलों के प्रमुख जीद राद अल हुसैन ने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि यह फैसला पारदर्शी और कानून के मुताबिक नहीं लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मौत की सजा देने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया के विदेश मंत्री अरमनाथा नासिर कहते हैं कि मौत की सजा देकर उनका देश कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा।
हुकुमान माती तो तिदा बर्तंतांगान देंगान रेजिम हुकुम इंटरनेशनल।
मौत की सजा अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं है। इंडोनेशिया में मौत की सजा दिए जाना एक सही कदम है और हमारे देश में कारगर भी। 1945 में बने संविधान के मुताबिक मौत की सजा देना मानव अधिकारों के खिलाफ नहीं है। विदेश मंत्री अरमनाथा नासिर के शब्द। वहीं इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाकी देशों को इंडोनेशिया के कानूनों का सम्मान करना चाहिए। जो फैसला हम लेने वाले हैं वो हमारे कानून के मुताबिक है। जैसे इंडोनेशिया बाकी देशों की कानून व्यवस्था का सम्मान करता है, हम उम्मीद करते हैं कि सभी देश हमारी कानून व्यवस्था का सम्मान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री अरमनाथा नासिर के शब्द। गिरफ्तार किए गए लोगों के परिवारजन कल नुसकम बंगन टापू पर इनसे मिलने गए, जहाँ इन सभी लोगों को मौत की सजा दी जाएगी। मानव अधिकार समूह लगातार राष्ट्रपति जोको विडोडो से इन सजाओं को खत्म करने की बात करते आए हैं, पर पिछले साल भी ऐसी सजाओं के खिलाफ आवेदन को सरकार ने खारिज कर दिया था। गिरफ्तार लोगों के नाम औपचारिक तौर पर बताए नहीं गए हैं, पर इनमें नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और भारत के लोग शामिल हैं। 2013 में इंडोनेशिया सरकार ने मौत की सजा पर लगी पाबंदी हटा दी थी। आंकड़ों के अनुसार अगर इन 14 लोगों को भी फांसी की सजा दे दी जाती है तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के शासन में पिछले दशक में दी गई सजाओं के मुकाबले बीते 2 सालों में फांसी देने के ज्यादा मामले दर्ज हो जाएंगे।
इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र की अपील को किया खारिज। 14 विदेशी नागरिकों को होगी फांसी की सजा। ये थे वैभव श्रीवास्तव।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब रुक करते हैं भारत का। तमिलनाडु के तटीय इलाके नागापट्टनम में त्यौहार के वक्त मंदिर में जाने से रोके जाने के बाद 6 दलितों के कथित तौर पर धर्म परिवर्तन करने की खबरें आ रही हैं। खबरों के अनुसार इन सभी दलितों ने इस्लाम को अपना लिया है और लगभग 200 दलित धर्म परिवर्तन का मन बना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू मक्कल कच्ची का दावा है कि ये धर्म परिवर्तन नहीं हुए हैं बल्कि धमकी दी जा रही है। वहीं तमिलनाडु तौहीद जमात दावा कर रही है कि इन 6 लोगों ने पहले इस्लाम को समझा और फिर धर्म परिवर्तन करने का फैसला लिया। पूरी जानकारी के साथ बेंगलुरु से इमरान कुरेशी।
तमिलनाडु में दलित इस्लाम में रूपांतरण लेना कोई नई बात नहीं है। 1980 के दशक की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था। अभी जो मामला तमिलनाडु के नागपट्टनम के एक गांव में सामने आया है वो थोड़ा अलग है। मसला यह है कि तमिलनाडु के मंदिरों में त्यौहार में अलग अलग जातियों को एक दिन दिया जाता है जब उनकी जाति के लोग त्यौहार मनाते हैं। नागपट्टनम के एक गांव के भद्रा कालियम्मन मंदिर में यही मांग थी और दलित इतने चिंतित हो गए कि उनमें से कुछ लोगों ने तमिलनाडु तौहीद जमात से संपर्क किया और कहा कि वह इस्लाम में धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन तमिलनाडु आरएसएस के प्रवक्ता एन सदगोपन कहते हैं, वहाँ कोई रूपांतरण नहीं हुआ है। थोड़े दलित लोगों ने तौहीद जमात से संपर्क किया था और उन्होंने 1 महीने इस्लाम पर कक्षा भी चलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं गया। हाँ, ये बात तो सही है कि वहाँ थोड़े जातियों के बीच ये मसला उठा है, लेकिन मामले को समाधान करने की कोशिश प्रशासन नहीं कर रही है। ये थे एन सदगोपन के शब्द। हिंदू मक्कल कच्ची के रवि कुमार कहते हैं, हमने खुद उन दलितों से बात की है जो रूपांतरण किए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से हमें ये कहा है कि उन्होंने रूपांतरण नहीं की है और जो कुछ इस मामले में उन्होंने कहा है वो सिर्फ एक धमकी थी। ये थे रवि कुमार के शब्द। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बहरहाल, दूसरी तरफ तमिलनाडु तौहीद जमात के महासचिव अब्दुल रहमान ने कहा,
அந்த கோயிலில் வந்து இவங்களுக்கு வழிபாட்டு உரிமை தர்றது இல்லை, தலித்துங்கிற காரணத்தினால அவங்களை வந்து இந்த தீண்டாமை.
हां ये बात सही है कि थोड़े दलित ने हमारे से संपर्क किया, लेकिन हम उनसे स्पष्ट तौर से कह दिया था कि रूपांतरण गुस्से में करने से ठीक नहीं होता है. उनको हमने इस्लाम के बारे में समझाया और उसके बाद 6 लोग ने रूपांतरण कर लिया. हम किसी को भी जबरदस्ती से रूपांतरण करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो यह काम सोच समझकर करें. ये थे अब्दुल रहमान के शब्द. ये तीनों प्रतिनिधि एक ही बात पर सहमत थे कि मंदिर में अलग अलग जातियों के बीच समझौता लाने की कोशिश अभी भी जारी है. 1980 दशक में तिरुनेलवेली के मीनाक्षीपुरम में दलित धर्म परिवर्तन का मामला अभी भी लोगों को याद है. आज भी वही मसला एक दूसरे रूप में सामने आ रहा है. बेंगलुरु से इमरान कुरैशी.
इधर गुजरात के बनासकांठा जिले के करीब 500 दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म अपनाने की इच्छा जताई है. ये लोग ऊना तालुका में उन 4 दलितों की पिटाई से नाराज हैं जो मृत गायों की खाल खींचने का काम करते थे. पूरे ब्यौरे के साथ अहमदाबाद से अंकुर जैन.
नरेंद्र मोदी वाले गुजरात मॉडल के बारे में तो देश में चर्चा लगातार होती रही है, पर गुजरात के दलित कुछ अलग ही कहानी लिख रहे हैं. उनमें दलितों की पिटाई के बाद शुरू हुए आंदोलन ने गुजरात में चल रही जाति व्यवस्था को चुनौती दे दी है. कई गांव में दलितों ने मरे हुए पशु के शव उठाने से मना कर दिया है. कहीं वे मांग कर रहे हैं कि सफाई और मैला ढोने के काम में अब स्वर्ण जाति के लोगों को मौका दिया जाए. और इन सब के बीच बनासकांठा के कई दलित परिवारों ने तो बौद्ध धर्म अपनाने की इच्छा जताई है. उनका कहना है कि यदि उनसे बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता तो हिंदू धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं है. बनासकांठा के अमृत चौहान उनमें से एक है जिन्होंने धर्म परिवर्तन की इच्छा जताई है. वे 50 वर्ष के हैं. अमृत भाई कहते हैं,
दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं और दलितों का जीना हराम हो गया है. दिन ब दिन दलितों को गरीबी में घोंस रही है गुजरात सरकार. इसी कारण हम ये हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनाया था, धर्म को बाबा के धर्म को हम अपना रहे हैं. बंधन में जो है के उससे ज्यादा तो दलितों को कोई लाभ हो नहीं रहा, तो हम ऐसे धर्म में क्यों रहे? धर्म में हमारा सम्मान न हो, धर्म में हमारे अधिकार न हो, ऐसे धर्म में रहने से क्या फायदा?
गुजरात में धर्म रूपांतर के लिए गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बनाया गया था जिसका अमलीकरण 2008 से हुआ. अधिनियम के अनुसार रूपांतर के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति लेना जरूरी है. अमृत भाई जैसे कई और अन्य लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए अर्जियां बनासकांठा दलित समाज को दी है जो इन्हें अब कलेक्टर को पहुंचाएगा. दलपत भाटिया बनासकांठा दलित समाज के अध्यक्ष हैं. वे कहते हैं कि गुजरात में भेदभाव की वजह से दलित बनकर रहना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं. भाटिया ने कहा,
हमारे यहाँ से अभी 500 इंसानों ने फॉर्म भरे हैं और यहाँ हमारे यहाँ ये धर्मांतरण की परिस्थिति इसलिए आई कि बार बार दलित पे अमानवीय अत्याचार बन रहे हैं और जब भी देख सरकार के पास भी इंसाफ लेने जा रहे हैं तो दलित को जो सही तरह से इंसान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. अभी दलित इंसान मानो के गंदा साफ करने का काम कर रहा है तो उसको मार खानी पड़ती है. मरे हुए पशु खींचते हैं तो भी मार पड़ती है, नहीं खींचते तो भी मार पड़ती है. ये आजादी के 65 साल में दलित अभी गुलामी कर रहा है. ये गुलामी में से मुक्त होने का वही एक ही रास्ता है, इसलिए हम धर्मांतर कर रहे हैं. बाबा साहब का वो बहुत धर्म है और धर्म मिलने से हमें ये कोई काम नहीं करेगा. हमें कोई बोलेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं कि काम करो. हम ये धर्म में रहेंगे नहीं तो हम कहाँ से काम करें. और एक और भी बात है, हम जब भी ये धर्म है हिंदू धर्म, इसमें कितनी भी ज्ञातियां हैं और जब भी बाजार में निकलते हैं कहीं निकलते हैं कोई इंसान हमें पूछ लेता है आप कौन हो, जब हम बताते हैं हमारी जाति तो सामने वाले का चेहरे पे बदलाव आ जाता है कि वो जाति का है. क्या है वो जाति का है, इसलिए हमें ये जाति में रहना नहीं है, धर्म में नहीं रहना है.
वहीं दलित नेता और वकील कौशिक परमार कहते हैं कि गुजरात में दलितों पे अत्याचार ने हर हद पार कर दी है और इसलिए समाज में इतना आक्रोश है.
हर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आती है तो ये लोगों का रोष है और कब तक लोग सहन कर सकते हैं, अब इसकी सीमा आ चुकी है. तो लोग बाहर भी आए धर्म परिवर्तन से और ये जो काम बंद करना है उसमें से ये लग रहा है कि एग्जैक्टली हमारे साथ भेदभाव तो नहीं होगा और दूसरा जो हमको गंदा काम करना पड़ता वो हम छोड़ भी सकेंगे. और दूसरा कि इसके साथ साथ हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि जो लोग ये गंदा काम छोड़ रहे हैं उनको जमीन दी जाए ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके.
पर क्या ये आंदोलन से कुछ बदलेगा? अपने लिए सम्मान और बराबरी का व्यवहार मांग रहे गुजरात के दलित क्या कामयाब होंगे? क्या ये आंदोलन देश के अन्य राज्यों में अत्याचार झेल रहे दलितों के लिए कोई नया मॉडल बनेगा? गुजरात सरकार की अब नजर जुलाई 31 को होने वाली दलित महारैली पर है. अहमदाबाद की रैली में दलित समाज अपनी मांगों को रखेगा. अंकुर जैन, बीबीसी अहमदाबाद.
और अब बात मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां दो मुस्लिम महिलाओं के साथ बीफ रखने के शक में हुई मारपीट के बाद आज चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि ये महिलाएं गिरोह के तौर पर काम कर रही हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मारपीट में किसी भी हिंदू संगठन का कोई लेना देना नहीं है। पेश है भोपाल से शुरे नियाजी की ये रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में मंगलवार को बीफ रखने के शक में दो मुस्लिम महिलाओं के साथ की गई मारपीट के मामले में आज चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के फौरन बाद उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस ने गोविंद चौहान, दिलीप देवदास, स्वदेश चनाल और विकास अहीर को वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों को कहा कि पूरे मामले में कोई भी हिंदू संगठन के लोग नहीं थे। उन्होंने महिलाओं को ही गिरोह के तौर पर काम करने का दोषी बताया।
कोई ना विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, ना बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। ये तो जनता ने वहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा कि महिलाएं मास्क लेकर जा रही हैं, और इसलिए जनता का जो जनाक्रोश था, उस जनाक्रोश के कारण, और पुलिस तत्काल अगर मौके पर नहीं पहुँचती तो बड़ी घटना होती। पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और दोनों महिलाओं को बचाया। ये चार लोग जो वहाँ विवेचना में जो आए हैं, उन गोविंद राव सहित तीन लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। और परंतु मेरा फिर कहना है कि ये जो ग्रोह के रूप में काम कर रही हैं ये महिलाएं, इनके विरुद्ध पूर्व से अपराध पंजीबद्ध है, और ये मीट के व्यापार में बहुत लंबे समय से, रतलाम में भी पकड़ी गई दो महिलाएं, मंदसौर में भी पकड़ी गई, और एक ये ग्रोह काम कर रहा है, इसके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करें।
वहीं पीड़ित सलमा मेवाती और शमीम हुसैन को गिरफ्तारी के बाद बुधवार रात जमानत मिल गई। उनका आरोप है कि उनके साथ पिटाई करने वाले लोग बजरंग दल के थे। सलमा ने बताया,
उतरे हम और तीन चार बजरंग दल वाले थे, तो जैसे हम गाड़ी से उतरे ट्रेन से, हाथ में हमारे थैली थी, हमारे पास में आके उन्होंने बोला कि इसके अंदर क्या है बताओ, तो हमने कि इसके अंदर क्या है बताओ हमारे को, तो हमने बोला कि आप कौन हो, हमसे पूछ रहे कि इसके अंदर क्या है बताओ हमारे को, तो कि हम बजरंग दल वाले हैं, तो ऐसा करके हम के इसके अंदर तो गाय का मांस है, तो मैं हमने बोला गाय का मांस नहीं है और पाड़े का है, भैंस पाड़े का, और जाफरा सा लेके आए हम, और हमारे पास में रसीद भी है, हमको वहाँ से उनके पास लाइसेंस है, और लाइसेंस पाड़े का जाफरा से लाए हैं, और पर्ची बताई हमने उनको, तो उन्होंने पर्ची हमसे लेके और फाड़ के फेंक दी, और बताने लगे कि हमने, मैंने पूछा कि आप कौन हो, तक हम बजरंग दल वाले हैं, मैं ऐसा करके नारा लगाने लगे कि जय जय श्री राम, ने हमारी गौ माता को खाते हुए नहीं है, उन्होंने ऐसा करके, और बता रहे कि दो दो लेडीज़ों को तो हमने ढूंढर में रोका है और उनकी बहुत लपक के पिटाई करी है ढूंढर में, और अभी आप भी हमारे हाथ से आप भी नहीं बचो, आदमी उन्होंने मारा था, और दो लेडीज भी थी, उनकी कार्यकर्ताएं थी, बजरंग दल वालों की कार्यकर्ताएं थी दो।
वहीं शमीम का आरोप है कि ये सब एक साजिश के तहत किया गया ताकि दंगे कराए जा सकें। उन्होंने अपनी जान को भी खतरा बताया।
पुलिस आई, थोड़ी लेट आई, पुलिस में दो पुलिस वाले खड़े थे, पर उनको उनने पत्नी करा, एक साथ ऊपर गिर गए। हमें तो यही लगता है कि इनकी साजिश है, झगड़े कराना चाह रहे हैं ये इन दोनों, झगड़ा लड़ाई कराना चाह रहे, दंगा करवाना चाह रहे हैं, और क्या करवाना चाह रहे हैं। हमें तो सुरक्षा चाहिए, जब इतनी बात फैल गई थी क्या ये लोग बैठेंगे क्या, धमकी आ रही है हमारे पास।
मंगलवार को इन महिलाओं के साथ कथित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके पास गौमांस होने के शक में पिटाई कर दी थी। बाद में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनके पास से 30 किलो मांस बरामद किया गया, जो जांच में गौमांस नहीं निकला। यह मामला बुधवार को दिल्ली में संसद में उठाया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी हरकत में आई। पहले की गई एफआईआर में किसी का भी नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद चार लोगों के नाम जोड़े गए। पुलिस का कहना है कि उन महिलाओं की भी तलाश की जा रही है जो मारपीट करते हुए वीडियो फुटेज में दिखी हैं। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ। बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार और आंदोलनकारी महाश्वेता देवी का कोलकाता के एक अस्पताल में देहांत हो गया। वो 90 वर्ष की थी। उन्हें जंगल के दावेदार और 1084 की मां जैसे उपन्यासकार के कारण जाना जाता है, पर उनके सरोकार साहित्य तक ही सीमित नहीं थे। समाज के सबसे गरीब, सबसे शोषित लोगों से उनका जीवंत जुड़ाव रहा। वो कई जन आंदोलन में भी शामिल रही और हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज का समर्थन करती रहीं। अदम्य जिजीविषा वाली इस लेखिका को बीबीसी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।
1980 में हिंदी भाषी दुनिया के गिने चुने लोग ही महाश्वेता देवी को जानते थे। हालांकि बांग्ला भाषी समाज में वो एक जाना पहचाना नाम थी। तब तक बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि में लिखा गया उनका मशहूर उपन्यास 1084वें की मां प्रकाशित हो चुका था। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गोरख पांडे और उर्मिलेश जैसे कुछ छात्र और समकालीन तीसरी दुनिया के संपादक आनंद स्वरूप वर्मा ने महाश्वेता देवी से इंटरव्यू लिया। वर्मा कहते हैं कि हिंदी में ये महाश्वेता का पहला इंटरव्यू था।
उन्होंने उसी इंटरव्यू में एक जगह कहा था जो मैं उनका एक सूत्र वाक्य आप समझ सकते हैं कि हम सभी लेखकों को जनता की दैनिक जिंदगी को समीप से देखे समझे बिना लिखने का कोई अधिकार नहीं है। यह जरूरी है कि हम जनता तक जाएं, उनकी वास्तविक जिंदगी से जुड़ी कहानियों को समझें और हमारे पास जो कुछ है वह उन्हें दें। इसी संदर्भ में उन्होंने फिर बताया कि हमें जो शोषण की जटिल प्रक्रिया है समाज में और तमाम जो अंतर विरोध है उनको जब तक हम समझेंगे नहीं, तो ये सब बातें जब वो कर रही थी तो हम लोगों को बिल्कुल लग रहा था कि जैसे ब्रेक्स को पढ़ रहे हो।
महाश्वेता देवी का जन्म अविभाजित बंगाल के ढाका शहर में 1926 में हुआ था। उनके पिता मनीष घटक खुद एक मशहूर उपन्यासकार थे और चाचा ऋत्विक घटक आगे चलकर एक फिल्मकार के रूप में विख्यात हुए। महाश्वेता देवी 1940 के दशक में बंगाल के कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रभावित हुईं और हमेशा दबे कुचले शोषित समाज की न्याय की लड़ाई में शामिल रहीं। उन्हें 1986 में पद्मश्री, 1996 में ज्ञानपीठ और 2006 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी कवि मंगलेश डबराल कहते हैं कि महाश्वेता देवी ने तीसरी दुनिया के लेखकों के सामने एक उदाहरण पेश किया।
एक इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि तीसरी दुनिया के देशों के लेखकों को कैसा होना चाहिए। और वो एक साथ वो एक्टिविस्ट भी थी, लेखक भी थी, वो एक साथ सोशल एक्टिविस्ट भी थी और राजनीतिक एक्टिविस्ट भी थी और लेखक तो खैर बड़ी होती ही। एक बात, दूसरी बात ये कि मतलब भारतीय साहित्य जो है वो अगर जो है देश की सारी भाषाओं में और विदेशों में भी जाना गया जिन वजहों से, जिन चीजों के कारण, उनमें महाश्वेता देवी की रचनाएं भी उनका बहुत प्रमुख स्थान है। और महाश्वेता जी पहली लेखिका है जिन्होंने नक्सलबाड़ी आंदोलन के दौरान जो जो लोगों ने यातनाएं सही उनका एक दस्तावेज 1084 माँ, ये उन्होंने इसकी उन्होंने रचना की।
अपने मशहूर उपन्यास 1084वें की माँ में महाश्वेता देवी ने एक भद्रलोक वर्ग की महिला की कहानी को तब की सामाजिक उथल पुथल से जोड़ा है। लीजिए सुनिए उपन्यास का एक अंश जहां कहानी की भद्रलोक नायिका को अपने नक्सली बेटे की पुलिस के हाथों मौत की खबर मिलती है।
सुंदर, बहुत सुंदर था सब कुछ। उसी समय उम्र के उन्हीं सजे सवरे दिनों में टेलीफोन की घंटी बजी थी। माँ ने नींद भरी आंखों से टेलीफोन का रिसीवर उठाया था। अचानक एक अनजान ठंडे मशीनी अफसरी स्वर ने पूछा था, व्रती चैटर्जी आपका कौन लगता है? बेटा कांटा पुकुर चले आइए। हाँ, उस रक्त मांस और आकारहीन स्वर ने कहा था, कांटा पुकूर चले आइए। रिसीवर हाथ से चिटक कर गिर पड़ा था। सुजाता नीचे गिर गई थी, दांत भिज गए थे।
कांटा पुकुर, कोलकाता की वो जगह जहां उन दिनों असली नकली पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए नौजवान नक्सलियों की लावारिस लाशें रखी जाती थीं। मंगलेश डबराल कहते हैं महाश्वेता से पहले बांग्ला साहित्य में ज्यादातर पारिवारिक द्वंद्व की कहानियां ही होती थीं। 2 साल पहले महाश्वेता देवी के बेटे नवारुण भट्टाचार्य की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। उनकी गिनती भी बांग्ला के विप्लवी कवियों में होती है। नवारुण के साथ भाषा बंधन नाम की पत्रिका का संपादन करने वाले अरविंद चतुर्वेद महाश्वेता के एक मानवीय पहलू को याद करते हैं।
बीच बीच में वो फोन करके बुला लेती थी कि की कोर्छो, ऐसो चले ऐसो, इस तरह से वो बोला करती थी। तो मैं उनके यहाँ चला गया रात को, अखबार के दफ्तर में काम करके थका हुआ था, गया बैठा। आज भी मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि तुम्हें खूब क्लांत देखा छो, तुम खूब थके हुए दिख रहे हो। और इतना कह कर के वो उठी, बाथरूम में गई। मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ, वो बाथरूम में एक तौलिया गीला करके और फिर उसको निचोड़ कर ले आई और मेरे पीछे खड़ी होकर मेरे सिर पर रख कर और कंधों पर रख कर वो दबाने लगी। और इस तरह से उन्होंने मेरे सिर को थोड़ा गीला पर किया और उन्होंने कहा कि देखो, जब मैं बहुत क्लांत होती हूँ तो इस तरह से अपने से ही मैं अपनी थकान मिटा लेती हूँ।
महाश्वेता देवी के साथ ही लेखकों की एक पूरी पीढ़ी का अंत हो गया है, जो लेखन को सामाजिक संघर्ष का हिस्सा मानते थे, ड्राइंग रूम में किया जाने वाला सुरक्षित रचना कर्म नहीं।
नहीं रही प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी एक श्रद्धांजलि। वहीं बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित लच्छू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 72 साल के थे। लच्छू महाराज ने BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में अंतिम सांस ली। नहीं रहे बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित लच्छू महाराज। और अब समय है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय। आज मैं हूं आपके साथ मोहनलाल शर्मा और मेरे साथ चिट्ठियों का अंबार लेकर बैठी है वंदना।
जी नमस्कार।
वंदना कहां से आज हम शुरू कर रहे हैं अपने
श्रोताओं की चिट्ठियों? जी जो पहला एक ईमेल है ये हम लेते हैं हरियाणा से। ये है ज्योतिर्मय गांव खरबला जिला हिसार। ये 2006 से कार्यक्रम सुन रहे हैं, लेकिन कहना इनका ये है कि चिट्ठी पहली बार लिख रहा हूँ, तो जरूर शामिल करिए। और इनको कार्यक्रम सब अच्छे लगते हैं, दुनिया जहान, विवेचना, और कई लोगों की तारीफ की है, रिहान फजल की, मोहनलाल शर्मा, सामने बैठे विनीत खरे, अमरेश द्विवेदी, लंबी फेहरिस्त है। और इनका कहना है कि जिस तरह से भारत को आकार देने वाली विभूतियों के बारे में श्रृंखला की थी, उसी तरह से विश्व को आकार देने वाली विभूतियों पर भी कार्यक्रम करें। शायद ये
फैला उजियारा की बात कर रहे हैं और ये श्रृंखला आप तक पहुंची थी। पहली बात तो ये कि बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगा कि आपने पहली बार हमें ईमेल लिखा, ज्योतिर्मय श्याम सुंदर दासम साहब। तो इसी तरह से चिट्ठी लिखते रहिए, और जहां तक आपका सुझाव है कि विश्व की विभूतियों के बारे में हम चर्चा करें, तो निश्चित तौर पर आपका ये जो सुझाव है बिल्कुल स्वागत योग्य है, वो हम अपने संपादकों की टीम तक पहुंचा देते हैं।
और ये दूसरा जो ईमेल है वो हम लेते हैं पवन कुमार छिंपा का। इनका गांव है बिलोचा वाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। इनकी शिकायत है, इनका कहना है कि लगता है BBC हिंदी के पास कोई खबर नहीं है, घिसी पीटी खबरें हैं और कई बार वो BBC उर्दू पर हम पहले ही सुन चुके होते हैं। क्या अच्छे रिपोर्टर नहीं हैं जो ज्वलंत मुद्दों पर अच्छी रिपोर्टें दे सके?
पवन भाई देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे पास रिपोर्टरों का अकाल है? तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इस समय भी विनीत खरे जो हैं वो अहमदाबाद से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाल ही में लगातार आपने जम्मू कश्मीर से हमारे जो सहयोगी हैं संवाददाता जुबैर अहमद, उनकी आपने रिपोर्टें सुनी। तो हर ज्वलंत मुद्दे पर हमारे संवाददाता वहां पर जाते हैं और वहां पर असलियत में क्या चल रहा है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। दूसरी चीज आपने ये कही कि तमाम आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जो कि आप BBC उर्दू पर पहले सुन चुके होते हैं। अक्सर होता यह है कि वो खबरें जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और हमारे तमाम श्रोता उनको हिंदी भाषी जो श्रोता है वो भी सुनना चाहते हैं, तो उन खबरों को हम अपने प्रसारण में भी जगह देते हैं। आप तो दोनों प्रसारण सुनते हैं, यानी कि BBC उर्दू भी सुनते हैं और BBC हिंदी भी सुनते हैं, लेकिन तमाम ऐसे श्रोता हैं जो सिर्फ BBC हिंदी सुन रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा लाभ हो जाता है।
जी बिल्कुल। और अगला जो ईमेल है ये है नागांव असम से सुरेंद्र नाथ सिंह।
लगातार हमें लिखते हैं और बहुत पुराने श्रोता हैं।
जी जी। और ये कह रहे हैं कि असम के बाढ़ विभीषिका की लगातार रिपोर्टिंग से हमें BBC हिंदी की टीम से अपनापन महसूस होता है। साथ ही इन्होंने जो कश्मीर की रिपोर्टिंग है उसकी बहुत तारीफ की है, कहा कि सटीक, निष्पक्ष और संतुलित रिपोर्टिंग रही।
सुरेंद्र नाथ जी, आप हमें लगातार चिट्ठियां लिखते हैं और ये जानकर हमें अच्छा लगा, क्योंकि कई श्रोता हमारे ये कहते हैं कि उत्तर पूर्व की खबरों को हम जगह नहीं देते हैं। उत्तर पूर्व की जो खबरें हैं उनको भी हम लगातार प्रसारित करते हैं, चाहे वहां पर बाढ़ की विभीषिका हो या कोई राजनीतिक संकट अगर चल रहा हो उसकी भी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। तो उद्देश्य ये रहता है कि समग्र भारत के अलग अलग इलाकों से जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई जाए, और ये हम कोशिश कर रहे हैं। और वंदना, अब लगता है कि हमारे पास और चिट्ठियां पढ़ने का वक्त नहीं है, तो अपने श्रोताओं से विदा ले लेते हैं। पता एक बार मैं बता दूं, यदि आप हमें चिट्ठी लिखना चाहें तो उसका पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110001। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk पर हमें आप भेजें। और फिलहाल मोहनलाल शर्मा
और मुझे वंदना को दीजिए अनुमति।
नमस्कार।
आपकी चिट्ठियों के बाद अब समय है मुख्य समाचारों का। सुनते हैं तृप्ति श्रीवास्तव से।
BBC समाचार, इंडोनेशिया ने एक भारतीय सहित 14 लोगों को मिली मौत की सजा की तामील रोकने की संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और विदेशी सरकारों की अपील खारिज कर दी है। इन लोगों को मादक पदार्थ की तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए सजा सुनाई गई थी। देश के पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 22 और असम में 13 तक पहुंच चुकी है। रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 70 खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए रियो रवाना हो गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को डोपिंग मामले में प्रतिबंध की वजह से घर पर रुकना पड़ा। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी तृप्ति श्रीवास्तव। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।